जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मौदीरये। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय श्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी कृष्ण कथा प्रेमी वैष्णव एवं वैष्णवी का गिरधारी मंदिर में हार्दिक स्वागत है। बहुत ही शुभ पवित्र महीना जिसको भगवान गीता में विभूति कहते हैं, मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम, मार्गशीर्ष महीना चल रहा है। और भगवान श्री कृष्ण की प्रेमवती शक्ति स्वरूपा काय व्यो ब्रज वनिताएं हैं, जिसको उद्धव ब्रह्मा शिव आदियों ने गुरु माना है प्रेम भक्ति की। उन ब्रज वनिताओं द्वारा कात्यायनी व्रत इसी महीने में हुआ था। हेमंते प्रथमे मासी चेरु ब्रज कुमारी का, ऐसे हेमंत ऋतु है और उसका प्रथम महीना मार्गशीर्ष माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन को अपने पति रूप में वरण करने के लिए उन गोपियों ने कात्यायनी का व्रत इसी महीने में किया, लेकिन इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन जब द्वारिकाधीश बने और द्वारिका की 16108 पटरानियों के भरतार, लेकिन भक्त वत्सल अपने अर्जुन के रथ के ड्राइविंग सारथी बने कुरुक्षेत्र में, और इसी महीने की एकादशी में श्रीमद् भगवद गीता का उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में त्रिमुख से गान किया, ये भी इसी महीने में। तो हम वैष्णवों के लिए साधना और शुद्धि के लिए बड़ा मंगलमय ऋतु और महीना है। विशेष रूप में हम इस्कान के भक्तों के लिए श्रील प्रभुपाद जी द्वारा और पूरे इस्कान के भक्तों में भव्य दिव्य और उत्साहपूर्वक भगवद्गीता मैराथन के रूप में इस दिसंबर, अंग्रेजी महीने के अनुसार दिसंबर महीने को मनाया जाएगा। तो हम सोचे कि उसी गीता अमृत के कुछ श्लोकों का आस्वादन किया जाए रविवार के सत्र में। वैसे आज चेंबूर में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है और भक्तों को बड़े उत्साह प्रेम से जगन्नाथ जी की कृपा और चैतन्य महाप्रभु इस रथ यात्रा उत्सव में बड़े भाव प्रेम उन्माद से आनंद से भाग लेते थे। और रथे तु वामनगम दृष्टवा, पुराणों में लिखा गया है कि रथ के ऊपर जगन्नाथ को बैठा हुआ कोई देखता है, उस रस्सी को खींचने की बात छोड़िए छू लेता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप जल जाते हैं, वो वैकुंठ का अधिकारी बनता है। ऐसे तो रथ यात्रा बहुत प्राचीन और पवित्र त्यौहार है, लेकिन केवल भारतवर्ष में ही था, लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अहेतु की कृपा जन समुदाय पर रही कि आज पूरे विश्व में जहाँ भी इस्कान के छोटे मोटे केंद्र है, उन भक्तों के द्वारा मानव समाज को जगन्नाथ जी की कृपा का लाभ पहुँचाया जाता है। उनके दर्शन का, कीर्तन का, प्रसाद का, यही वास्तविक में मानव सेवा, जन सेवा जो भी कहिए, यही है कि उसको कृष्ण से जुड़ाया जाए। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सा, जीव के ऊपर सबसे बड़ी दया यही है कि उसे कृष्ण का नाम दिया जाए, कृष्ण से संबंध कराया जाए। और ये इस्कान के भक्त लोग कर रहे हैं, बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। तो कुछ भक्तों को उसमें भी भाग लेना है, इसलिए ज़्यादा प्रवचन न करते हुए 2 बजे समाप्त करेंगे हम। और भगवद गीता के श्रोता के रूप में द्वारिकाधीश ने पांडु सुतर प्रिय, पांडव के सभी पुत्र भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन प्रिय में भी प्रियतम अर्जुन है जो गीता के लिए उसने चुना है। और भगवान ने श्री मुख से कहा है, भक्तो असि सखा चैति, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, मित्र हो, और इसीलिए तुम्हें दिव्य रहस्य में ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसे भगवद गीता आदि अनादि सनातन ग्रंथ है। चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं करोड़ों वर्ष पहले सूर्य को ये दे चुका, लेकिन परंपरा लुप्त होने से, राजर्षियों की परंपरा, ऋषियों की तो चल रही थी, लेकिन राज परंपरा में ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए मैं पुनः तुमसे दे रहा हूं। तो भगवद गीता के प्रत्येक शब्द में ज्ञान भरा है, भक्ति है, प्रेम है, और ये ऐसी गंगा है, ज्ञान गंगा, जो भगवान के मुख कमल से निकली है। या स्वयं मुखम पद्मनाभस्य, पद्मनाभ के श्री मुख से निकला हुआ झरता हुआ ये ज्ञान अमृत है। इसलिए कई कई रसिक भक्त जब कहते हैं कि हम गीता पढ़ते हैं, तो पढ़ते है नहीं कहते, हम गीता अमृत पीते हैं ऐसा कहते हैं, इसका पान होता है। तो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, वेदों को बनाने वाले और वेदों के तात्पर्य श्री कृष्ण स्वयं श्री मुख से उपनिषदों का सार, श्रीमद भगवद गीता ज्ञान अमृत श्री अर्जुन को माध्यम बनाकर हम मानव समाज को, विशेष रूप में वैष्णवों को दे रहे हैं। इसलिए बड़ा उपादेय ग्रंथ है। श्रील प्रभुपाद जी को विदेशों में पूछा जाता था कि आपकी सफलता का क्या सार राज है, तो कहते थे भगवद गीता एज इट इज, ये भगवद गीता है जिसे मैं इतना सफल। तो कोई भी कोटेशन हो, प्रभुपाद जी गीता से देते थे, गीता के श्लोकों से देते थे। और बड़ी क्रांति की भगवद गीता एज इट इज ने, के जन जन के हृदय में कृष्ण भक्ति के संस्कार को जागृत किया जो सुसुप्त अवस्था में थे। तो हम भक्तों को चाहिए कि इन गीता अमृत को नित्य पढ़े, सुने, समझे और यथाशक्ति मति तन मन धन से इनका प्रचार करें। इससे हम प्रभुपाद की और श्री कृष्ण की परम कृपा को पा सकते हैं। तो उपकरण में इतना कहते हुए आइए हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय जिसमें संन्यास की सिद्धि भगवत प्रभुपाद जी ने नाम दिया है, और उसमें भगवान ने अपनी गीता ज्ञान गंगा को पूर्ण कर दिया है। और उसको सुनकर अर्जुन अपना अनुभव कहते हैं, अपना रियलाइजेशन श्लोकों में व्यक्त करते हैं। तो वे अर्जुन के मुख से श्लोक है, आप सभी भक्त हमारे पीछे बोलिए। श्री अर्जुन उवाच, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादामयच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह, करिष्ये वचनं तव। सभी प्रभु जी एक साथ बोलेंगे और माता ही बाद में बोलेंगे, ओके? बोलिए सभी, अर्जुन तो माता वो पीछे बोलेगी, हाँ ऐसे माता है एक साथ सभी बोलिए आप लोग भी अर्जुन नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा साथ में बोलने से एक लाभ होता है कि कैसा बोले किसको पता तो नहीं चलता किसने गलती तो सबका चलता है और दूसरा लाभ ये होता है कि कुछ भक्त होते हैं दूसरों का नंबर ही नहीं आने देते तो उसमें भी उसको भी चांस मिलता है और सबसे बड़ा फायदा ये था कि समय ही नहीं था तो हमने इसीलिए इसको इस युक्ति को निकाला। आइए शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा नष्ट दूर हुआ मोह मोह स्मृति स्मरण शक्ति लब्ध्वा पुनः प्राप्त हुई तत्प्रसादात आपकी कृपा से मैया मेरे द्वारा अच्युत हे अच्युत श्री कृष्ण स्थित स्थित अस्मि हूँ गत दूर हुए संदेह सारे संशय करके पूरा करूँगा वचनम आदेश को तब तुम्हारे। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण हे अच्युत अब मेरा मोह दूर हो गया आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तात्पर्य अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करना यही कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण ये नहीं जानता कि परमेश्वर स्वामी है जो ज्ञानमय है सर्व संपत्तिवान है वे अपने भक्तों को जो चाहे दे सकते हैं वे सबके मित्र है और भक्तों पर विशेष कृपालु वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अध्यक्ष हैं अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्य एवं शक्तियों से परिपूर्ण है। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके ही नहीं बल्कि उनके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। तो श्रील प्रभुपाद बड़ा संक्षेप सार गर्भित तात्पर्य लिखते हैं कि कृष्ण की आज्ञा का पालन करना यही कृष्ण भावनामृत है। तो श्री अर्जुन यहां अपना अनुभव कह रहे हैं ऐसे मनुष्य जीवन की महासंपत्तिवान महामूल्य मूड़ी संपत्ति है आयुष्य। और आयुष्य हमारा क्षण क्षण नष्ट हो रहा है। श्रीमद् भागवत 10:20-37 जिसमें शरद ऋतु का वर्णन करते हुए सुखदेव जी गंगा तट पर कहते हैं, नैवा विदन शीयमाणा जले गाध जले चरा यथा आयुन वह क्षीय नरा मूढ़ा कुटुंबिना। जो व्यक्ति मूढ़ है, मूर्ख है, जो कुटुंब का भरण पोषण करने में यह नहीं जान पाता कि उसकी आयुष्य नष्ट हो रही है, जैसे उदाहरण दिया जा रहा है जले गाद जले चरा, जैसे वर्षा ऋतु में कहीं गड्ढे में जल एकत्रित हो जाए और उसमें रहने वाले मत्स्य आदि छोटी छोटी मछलियां होती है उसमें, लेकिन वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद जब शरद ऋतु आती तो शरद ऋतु के सूर्य की किरणों के प्रभाव से वो जल शोषण होते रहता है, कम होते रहता है, लेकिन उस मूड मत्स्य को पता नहीं है कि अभी कुछ ही दिनों में ये जल उड़ जाएगा और मैं मर जाऊंगा। नैवा विदन शीयमाण जले गाद जले चरा, जल में रहने वाला वो जलचर मत्स्य ये न विदन नहीं जानता है कि शीयमाणा मेरी मृत्यु नजदीक आ रही। वैसे ही नरा मूढ़ा कुटुंबिना, वैसे ही मूर्ख मनुष्य कुटुंब भरण पालन पोषण करने में अपने बीतती हुई नष्ट होती हुई आयु को नहीं देख रहा, ये उदाहरण दिया जा रहा है। और सुखदेव गोस्वामी सभा में उसको मूड कहते हैं, उस मनुष्य को। गीता में भी मूड शब्द आया है, भागवत में तो बहुत बार आया है, और हम सत्संग में इसीलिए आते हैं कि मूढ़ों की डिक्शनरी से हमारा नाम हमें निकालना। हमारे आने का उद्देश्य यही है कि हमें भक्त में जॉइंट होना है, मूढ़ों से दूर उससे निकालना है हमारे नाम को। इसलिए मूड क्या करते हो जानना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। बहुत जगह पे आया भागवत 5:5-16 ऋषभ देव भगवान, लोक स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि। हे मेरे पुत्रों, ऋषभ देव भगवान कहते हैं, ये लोक में मनुष्य की जो श्रेय करने वाली स्वयं का श्रेय भला हो मंगल हो दृष्टि नष्ट हो चुकी है। अर्थान समी है तो वो अर्थ को ही इकट्ठा करने में लगे हैं, निकाम काम है, उनकी कामनाओं की कोई कमी नहीं है। और फिर क्या करते हैं, अन्योन्य वैरम सुख लेश है तो थोड़े से क्षणिक इंद्रिय शारीरिक विषय सुख के लिए अन्योन्य वैरम एक दूसरे से वैर करते हैं। अन्योन्य वैरम सुख लेश है तो दुखम अनंतम न वेद मूढ़। लेकिन वो मूढ़ अनंत दुख जो आगे मृत्यु आने वाला है सबसे बड़ा दुख उसको देखता ही नहीं, छोटे छोटे सुख के लिए इंद्रिय तृप्ति के अन्य अन्य परिवार में एक दूसरे से वैर करता है, समाज में वैर करता है, सब जगह अपनी कामनाओं की, क्योंकि कामनाओं की कोई पूर्ति नहीं। तो वहां पर भी ऋषभदेव भगवान मूढ़ के डिक्शनरी में से पुत्रों बाहर निकले, मूढ़ ये नहीं करते, बाहर निकाल गए। तो यहां पर सुखदेव जी मत्स्य का उदाहरण दे रहे हैं। इसी तरह हम भक्तों को चाहिए, काल व्याल मुखम ग्रासम, काल क्रीड़ा कर रहा है हमारे ऊपर, शंकराचार्य के शब्द है, काल क्रीड़ति गच्छन आयु तदपि न मुंचति आशा वायु भज गोविंद, काल क्रीड़ा कर रहा है। इसीलिए मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ सार है कृष्ण शरणागति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण आज्ञा का पालन। और अहम मम ये जो मोह है, ये भी मोह की व्याख्या भी भागवतम में है, ऋषभदेव भगवान ही भागवतम में 5:5-6 में कहते हैं इसको, 6 या 7 नंबर श्लोक होगा, जनस्य मोह अयम ममेति, मैं ये शरीर हूं, ये शरीर के संबंधी मेरे हैं, ये मोह है। लेकिन अर्जुन यहां पर कहता है कि गीता का ज्ञान सुनकर हे कृष्ण नष्ट मोह। लेकिन हमारी दशा कुछ ऐसी है कि हम गीता का प्रवचन करके कितने का मोह दूर कर दिए, लेकिन हमारा नहीं हुआ, खुद का मोह ने अभी भी जकड़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण कीमती है, भजन करो, तो तेरी नहीं है, श्रोताओं की है केवल, ये प्रीचरों की बात कर रहा हूं। भजन एक एक प्रवचन तो बोल लेते हैं हम लोग, लेकिन दशा अपनी दशा क्या है। मोह जैसे बातें तो बहुत होती है, लेकिन जब अपने पर बीतती है, स्वयं अनुभव, स्वयं लीला, अपनी दशा, अपनी स्थिति क्या है। अर्जुन यहां अपनी स्थिति बता रहे। शंकराचार्य ने कहा है ज्ञाते तत्व क संसारम। अगर आपको तत्व का ज्ञान हो गया कि आप आत्मा हो, अविनाशी हो, अज हो, नित्य हो, शरीर मरता है, आत्मा नहीं, शरीर के संबंधी नश्वर है, पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, फिर भी हम उसी में मर रहे हैं। और विष्णु और वैष्णव हमारे वास्तविक सुहृद है, हितेशी है, लेकिन उनके लिए नो टाइम, व्यवहार के लिए बने हुए। वैष्णव के जीवन में वासुदेव मुख्य होते हैं, व्यवहार गौण होता है, लेकिन हमारे जीवन में कोई काम नहीं है तो चलो मंदिर जाते हैं, थोड़ा सुन लो व्यवहार, किसी का शादी नहीं होना चाहिए, किसी का फंक्शन कुछ नहीं होता है तो चलो प्रसाद खा के आते। भक्ति जो है हम किसको महत्व दे रहे हैं, हम बोलते क्या है, सुनते क्या है और दशा क्या है। इसलिए हम ये दिवाली के बाद ये नए साल में जब शुभारंभ कर रहे हैं तो वो भक्ति सिद्धांत महाराज उदाहरण देते थे उस तरह, पहले लंगर निकाले फिर चप्पू चलाए, तो नाव वाला है ना कि पहले लंगर निकालना है, ये मोह रूपी जो हम जमा के बैठे उसको पहले निकालना है, समझ, इस पर विचार करना है। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है भगवान, और भगवान मतलब कलयुग में भगवान नाम, क्योंकि कोई भेद नहीं है भगवान और भगवान के नाम में। भागवत में लिखा गया है 5:18-13 हरि ही साक्षात भगवत शरीरिणा आत्मा जसाणाम त्वयम् एव मित्सित। भगवान श्री हरि ही, भगवान हरि ही जितने शरीरधारी है उसके लिए एकमात्र प्राण है, ग्रहणीय है। कैसे, जैसे जशाणाम जल में रहने वाले जीवों के लिए, मीन आदि मत्स्य के लिए जल ही जीवन होता, तोयम, तोयम मतलब जल कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसे जल ही उनका जीवन है। मीन के लिए जल ही है, सुखी मीन जहानी रगाधा जिमि हरि शरण एक न बाधा। जैसे बहुत पानी भरा हो तो मीन उसमें सुख लेता है, ऐसे ही जैसे हरि की शरण में, जगन्नाथ जी के आश्रय में, गिरधारी के चरणों में जो है तो सुख आनंद चित्त, ये तो उनकी संपत्ति है, उसमें वो रहेगा। लेकिन ये हम सुनते रहते थे, होता नहीं इसका अनुभव, इसलिए इनको सुनना है। गोकर्ण जी ने यही कहा अपने पिता से, मुंचा अज्ञान प्रजा रूपम मोह तो नर के गति। हे पिताजी, इस अज्ञान से आप मुक्त हो जाइए कि ये मेरी प्रजा है, ये मेरा पुत्र है, क्योंकि ये जो मेरा और मेरी में जो मोह है वो आपको नरक में बिना रिजर्वेशन के पहुंचा देगा, बिना एजेंट के। मोह तो मोह की एक ही गति है नरक। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ज्ञान का विरोधी है मोह, मतलब अज्ञान। फिर भी आत्मदेव तो रो रहे थे, मेरा मेरा कर रहे थे। असार खलु संसारो दुख रोपी विमोहक। इस संसार में कोई सार नहीं, केवल कृष्ण ही सार है। सम्यक बिंदी होता है ना, संसार कैसे लिखते हो, सम्यक बिंदी करते फिर सार, वो बिंदी ही कृष्ण है, वो निकल जाए तो सारा असार असार। तो इस संसार में कुछ सार नहीं है, सम्यक असार इति संसार है, ऐसा अर्थ किया गया है, जिसमें कोई सार न हो, पूरा असार ही असार हो वह संसार। और दुख रूपी, इसमें केवल दुख ही दुख है, केवल मोह होगा, भ्रांति होगी, फिर क्या होगा? वो कहते हैं कि कस्य पुत्र कस्य धनम स्नेहवान जलते निशिम, कौन किसका पुत्र है, किसका क्या धन है, ये जो स्नेह है मेरा पना की जो अंदर में भावना है, हृदय में ग्रंथि है, गांठ है, वो जलते आपको जलाएगी। जैसे स्नेह घी को संस्कृत में स्नेह कहते हैं, अब दिया हो और उसमें घी डालते रहो तो क्या होगा, वो जलता ही रहेगा। ऐसे ही हमारे हमारे हृदय में ये मोह है संसार के प्रति, संसार के संबंधियों के प्रति, मेरापन जिसको हम मान लिए, मेरे है नहीं, मेरे गिरदारी है लेकिन वो तो छोड़ो, मेरे ये सब है, तो यही आपको जलाते रहेंगे, दुख देते रहेंगे सदैव। न चंद्रस्य सुखम किंचित, पिताजी इंद्र को भी कोई सुख नहीं है स्वर्ग में, इस संसार के मीरा रोड वाले, बोरीवली वाले, पृथ्वी वाले की बात छोड़ो, स्वर्ग के राजा इंद्र को भी सुख नहीं है। और न सुखम चक्रवर्ती, न चक्रवर्ती राजाओं को भी सुख नहीं है, इतिहास प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है इसके। तो फिर सुख किसको है? सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविना, सुख है तो केवल भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझे हुए और उसकी भक्ति में जो रत है, उस वैष्णव को जो हरि नाम लेता है, हरि कथा सुनता है, उनको ही सुख है, बाकी तो सब दुख में मर रहे हैं। गोकर्ण जी ने बड़े संक्षेप में सार कह दिया संसार का, स्वप्नवत संसार है और दुख सत्य भुगतना पड़ता है। आप समझ रहे हो, ये जहां पर सबन झूठे है, क्रिया झूठी है, लेकिन दंड जो नरक में असली में मिलता है। एक कड़ी संसार की टेढ़ी रमत है। एक भिखारी था और वो किसी राजा के पास गया, तो राजा उसको दान दे रहा था, तो उसकी धर्मपत्नी रानी साथ में खड़ी थी, तो उसने कहा अरे महाराज दे दीजिए, भिख मांगे थोड़ा ज्यादा दे दीजिए, उधार दे। तो राजा और देने लगा खुश होके भिखारी को, तो थोड़ा धन दे दिया, खाना दे दिया, तो खुश हो गया। और धन को बटोरता हुआ, खाना खाया हुआ, वो भिखारी जब महल से बाहर निकला, उस राज्य के कुआं था एक कुआं, और उस कुएं में बॉर्डर बनाई जाती है ना, जहां से वो पानी निकाला जाता है गोलाकार, थोड़ी 2-3 फीट ऊंची बाउंड्री बनाई जाती है, तो उसके ऊपर जाके बैठा। अब व्यक्ति बैठता है लेकिन उसका मन तो बैठता नहीं, जैसे आप लोग यहां बैठे हो, लेकिन मन का थोड़ी भरोसा है कि गिरधारी में बैठे हुए, वो तो कुएं पे बैठा था लेकिन उनका मन महल में था, वहां पर जहां वो कुछ खा के आया था, कुछ लेके आया था उस महल में। बोले क्या दुनिया है भगवान, हम लोगों का शाम का कल खाएंगे क्या ठिकाने है, उनके यहाँ भंडार भरे हैं। अभी वो जो राजसिक खाया था ना, वो धन भी उसके पास था, उसका उसका विचार भी जैसा अन्न, ऐसा सुना है ना आप लोगों ने, महाप्रभु चैतन्य ने रघुनाथ दास जी से कहा ना, विषय अन्न खाई ले विषय हदन, मंदित हो जाएगा तुम्हारा मन, ऐसे ही दशा इनकी होगी, ये भी सोचने लगा। और खाना खाया था तो उसी कुआ की बॉर्डर पाली पे सो गया, और सोते सोते स्वप्न लग गया, स्वप्न में वो भी राजा बन गया। स्वप्न में तो राजा रंग कुछ भी बन सकते हैं, उसमें थोड़ी पैसा लगता है, उसमें थोड़ी पेन के धक्के खाने होते, सीधा ही राजा। और स्वप्न देखता हुआ उसकी भी रानियां हो गई। अभी वो स्वप्न में देख रहा है वो भिकमंगा कि सुवर्ण के रत्न जड़ित पलंग पर अपनी महारानी के साथ सोया है, और बड़ा पैर पसार के सोया है। तब वो महारानी कहते हैं, वो जी थोड़ा बाजू में हटती है, तो कहती तू हट, थोड़ा तू हट, हट करते हुए सपने में हिल रहा था, गिरा कुएं में चढ़ा, कोई रानी वानी थी नहीं, लेकिन वो सपने में ऐसे हिल रहा था। कई लोग खटिया से गिरते हैं लेकिन कहते नहीं, वो तो घर वालों को भी पता होता है। वो देख रहा था स्वप्न नकली और गिरा असलियत में। ठीक दशा हम लोगों की है, हम यहां जो कुछ करते हैं साथ कुछ नहीं आएगा, सब झूठा जमेला ड्रामा है, दंड असलियत, नरक में असली में जाना पड़ता है आत्मा को। ये इस चक्कर को हमें समझना है। ये मोह जो अर्जुन कह रहा है कि मेरा मोह नष्ट हो गया, हम लोग क्या होता क्यों नहीं, इस चक्कर को समझना है ना, क्योंकि गीता के श्लोक तो कई हम रट दिए, कई प्रवचन कर दिए। यही अर्जुन 11वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं विगत मोहमयम, कृष्ण मेरा मोह दूर हो गया। तब भी भगवान ने 12 बार सुनाया, 13 बार, 14, 15, फिर 6 अध्याय सुना दी। मतलब भगवान जानते थे कि ये कह रहा है लेकिन अभी ठीक से गया नहीं। नहीं तो आप पढ़िएगा 11वें अध्याय का पहला श्लोक, अर्जुन अर्जुन वाच वहां पर भी है। अर्जुन कहता है विगत मोहमयम कृष्ण मेरा, क्योंकि कृष्ण ने 10वें अध्याय में विभूति गिनाया कि मैं ये हूं नक्षत्राणाम अहम सचिव, सब गिना दिया। फिर कहते एकांश स्थित जगत, मैं तुमको क्या क्या गिना, इतना सारा टाइम नहीं है, इसलिए जो भी तुम देख रहे हो यद्यप विभूति मत सत्तम श्री भगवान ने कह दिया। तो इतना सुन के अर्जुन ने कहा हाँ मेरा मोह चला गया। बोल तो दिया लेकिन भगवान अंदर से समझ रहे थे कि ठीक इनकी दशा मीरा रोड के भक्त जैसी है, ये बोल रहा है लेकिन अभी इसको और देना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा है। और फिर भगवान ने विश्वरूप दिखाया तो फिर अर्जुन नते मां विमुदा भाव, फिर स्वीकार करता है 11वें अध्याय में कि मेरी मति चकरा रही है, क्या करूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फिर 12 में प्रश्न करता है जैसा के एम योग वित्त में, फिर चालू होता है गीता ज्ञान। तो अर्जुन एक तरह स्वीकार करता है फिर भी नहीं हो रहा। देखो इस श्लोक में अर्जुन भगवान को एक संबोधन देते अच्युत, त्वई प्रसादा अच्युत, कृष्ण नहीं कह रहे, क्या कह रहे अच्युत, अच्युत त्वई, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हुआ। मतलब तो एक बात समझ में आती है कि हम कितना ही ज्ञान पढ़ ले सुन ले, जब तक भगवान की कृपा न हो, भगवान के प्यारे भक्तों की अनुकंपा अनुग्रह न हो, तब तक वाणी में आ जाता है लेकिन वास्तविकता कुछ और हो जाती है। अर्जुन यह कह रहा है कि आपके प्रसाद से ही मेरा मोह नष्ट हुआ। और अच्युत, आप अच्युत हो। देखो पहले अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने अच्युत ही कहा था, सेनयो अर्जुन उवाच नंबर 1 पहले अध्याय में है अर्जुन उवाच, तो वहां पर भी यही कि सेनयो दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को हे अच्युत ले जाइए। अच्युत शब्द गीता में 3 बार आया अर्जुन के द्वारा, ये पहले में 1:21 में वो कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाओ अच्युत। प्रभुपाद वहां पर लिखते हैं अच्युत शब्द का तात्पर्य अपने अपने टीका में, अपने भगवद्गीता एज इट इज में, कि भगवान अपने भक्तों में स्नेह दिखाने में कभी चूकते नहीं, अच्युत नहीं होते। तो भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति स्नेह है, कृपा है, करुणा है, अपनापन वात्सल्य है, और वो हमेशा अच्युत रहता, चूकते नहीं कभी, इसलिए वो अच्युत है। और सारा जगत उसकी आज्ञा पर चलता है, रवि शशि आज्ञाकारी हिंदी में भजनों में आया है। और ब्रह्मा जी भी कहते हैं यस्याज्ञया ब्रह्मति, भगवान की आज्ञा में चार अचर सारे लोकपाल देवता काल सब है, मत भयात वातिया। और वे भगवान प्रभुपाद लिखते वहां तात्पर्य में अच्युत शब्द के ऊपर, किस जिसकी आज्ञा में सारा विश्व है, और वे भगवान अपने भक्त की आज्ञा का पालन करने में आनंद लेते हैं। ऐसा नहीं मेरे को क्यों बोला अभी, सब लोग देख रहे गीता में मेरा डाउन होगा, खुश हो रहे हैं वहां मेरे भक्त की आज्ञा का पालन करने में उसे आनंद आता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण गुरु है और सिखा रहे कि उसके भक्त की वैष्णव की आज्ञा पालन में उसे आनंद आता है। और हमें कोई वैष्णव हमारे गुरु कृपा करके आज्ञा दे तो हमारा सर्ग रही है। मेरे को अभी मैं क्यों आया इधर, मेरा काम है सुबह केवल गाने का, चित्ते से करी है क्या, केवल चित्त में सुनने का, करने का नहीं। हमको भी आज्ञा दी हुई है गुरुजनों ने, लेकिन मेरा काम है सुनना। सुनना भी एक बड़ी सेवा है, कुछ लोग है वो दूसरा तो सुनता भी नहीं। मेरे साथ जो दीक्षा लिया था वो तो सुनता भी नहीं, मैं अच्छा हूं मंदिर में आके सुनता हूं, करता नहीं वो पालन। लेकिन भगवान स्वयं देखो अपना स्वभाव बता रहे कि अर्जुन मुझे आज्ञा दे रहे हैं, वो आनंद से कर रहे ले जा रहे अपने। लेकिन ये भगवान की शालीनता भी है लेकिन एक बड़ी माहिरता भी है, क्योंकि कृष्ण कृष्ण है ना, बड़े बुद्धिमान है, वदताम वर है भागवतम के अनुसार, योगेश्वर है, वो बुद्धिमान है, उसको पता है कि जिस जो भी महान बुद्धिमान होता है ना उसको पता है कि जिससे मुझे आज्ञा मनवानी है उसकी पहले मैं मानूंगा। अभी देखो वहां पर माने, अभी कौन मान रहा है, अर्जुन मान रहा है करिष्ये वचनम क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं इसकी आज्ञा मानूंगा, फिर इसको मजबूरी में मेरी माननी। आप लोग भी ऐसे व्यवहार में यही करते हो ना, आप वो मेरे घर आए, मैं जाऊं तो वो आएगा ना, प्लान होता है ना हम लोग का कि मैं ये करूं तो वो भी करे, मजबूर करो उसको, प्रेम से चाहे कैसे भी व्यवहार नीति कुछ भी लगा। तो भगवान तो प्रेमी भी है और नीति की भी है, नीति प्रीति सारथ परमारथ राम यथा सब जानते हैं बढ़िया से। इसलिए भगवान से सोचा कि अभी मैं इनकी आज्ञा मानता हूं और आगे अंत में तो आज्ञा किसकी चलेगी, मेरी चलानी है, लेकिन इसको मैं मानूंगा तभी आगे जाके मानेगा, ये नीति भी है। और अभी अर्जुन मान रहा है, अंत में पहले भगवान ने मानी फिर अब भगत मान रहा है, अर्जुन मान रहा है। तो अच्युत कह रहा है वहां पर, और 11वें अध्याय के 42 नंबर श्लोक भगवत गीता में अर्जुन फिर अच्युत कहता है, यच्चावसार्थ असत्कृतोसि विहार संयाशन भोजनेषु एको त्वताप्यच्युत तत्समक्षम तत्श्यामये तत्समस्मरणीयम्। विहार, आपके साथ चलने में, विहार करने में, शैया आसन बैठने में, भोजनम, असत्कृतोसि, मैंने आपका बहुत अनादर किया। कभी आप दोनों अकेले घूमने जाते थे मॉर्निंग वॉक पे या संध्या समय, तब भी मैं आपके साथ अकेला होता था कि कृष्ण यमुना तट पर, हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, तो बहुत कुछ आपको बोल दिया, अनादर कर दिया। और कभी आप लोग पांचों भाइयों के साथ रहते थे, बड़े सबके सभा में रहते, तब भी मैं आपके साथ बोल देता था कुछ भी, एको अथवा यच्युत तत्समक्षम तत्श्याम। लेकिन आज मुझे पता चला कि आप तो काल के भी बाप है, मैं तो समझ रहा था कि आप मेरे मित्र हो, लेकिन सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, वो वाले के बाद वाला श्लोक है। तो वहां पर अच्युत कहते, कृष्ण कहते, अर्जुन कहता है, कहते हैं कि हे अच्युत तत्श्याम ये आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और अभी अंत में अच्युत कह रहे अर्जुन जी भगवान कृष्ण को, मतलब अर्जुन एक कटाक्ष दे रहा है। एक आचार्य लिखते हैं कि आप अच्युत हो मतलब आपने जो ठान लिया, आपने जो निर्णय कर लिया, उसमें आप कभी च्युत नहीं होते, वो करवा के ही रहोगे। मुझे नहीं लड़ना था, लेकिन आपने कैसे ही पट्टी पढ़ाई, क्या क्या कराया, अंततः मेरे हाथ में धनुष थमा दिया, उत्साह में आ गया। जैसे महाप्रसाद गोविंद और भगत उत्साह में आ जाता है, ऐसे ही उत्साह में आ गया, क्योंकि आप अच्छी हो, आप जो नींद, आप जो बोल दो करवा लेते कुछ भी। और मोह में भी इसी ने डाला था, अर्जुन मोह में था नहीं। देखो यहां पर अच्युत जच्युत है ना, उसे भी पार्थ, इसके आगे वाले श्लोक में कृष्ण क्या कहते पता, ये अर्जुन बोल रहा है 73 नंबर श्लोक है, इसके आगे वाला 72 श्लोक कृष्ण बोल रहा है कि हे पार्थ, मैंने तुमको गीता का ज्ञान दे दिया, तुमको समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है ना, तो अभी मैं पूरा करता हूं, प्रसाद का टाइम हो गया। ये कृष्ण का अंतिम श्लोक है, वहां पर पार्थ संबोधन है, दो संबोधन है, पार्थ और धनंजय, आप सुनोगे उस श्लोक को। कश्चित एतम श्रुतम पार्थ त्वयग्रेण चेतसा, तूने एकाग्र चित्त से मेरे द्वारा दिया हुआ हे पार्थ ये गीता का ज्ञान सुना ना, पूछ रहे भगवान, सुना ना। कश्चित अज्ञान सम्मोह, कुछ अज्ञान या कुछ मोह डाउट तो नहीं रहा ना, प्रण कश्चित धनंजय, अगर हे धनंजय समझ में आ गया है तो शरण में आ जा। ये भगवान दो बात बता रहे, पार्थ और धनंजय। और वहां पर भी जब अर्जुन पहले अध्याय में कहा कि अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाओ, तो कृष्ण खड़े हो गए, सेनाओं के बीच में तो ले गए, एवं उक्त्वा ऋषिकेश अर्जुन संजय बोल दिया कि इस तरह अर्जुन का सुना, तो दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले गए और फिर भगवान रथ पर खड़े हुए। तत्र पश्चानितान पार्थ पितृनत पिता महान, हे पार्थ देखो तुम्हारे पितामह को, तो पहली बार आया है क्या शादी में, इंट्रो करा रहे हो आप, उसी गोद में तो बड़ा हुआ, पितामह की गोद में तो अर्जुन अभी अभी दिखा रहे हैं, मतलब खुद अर्जुन को मोह प्रकट करा रहे हैं। पार्थ मतलब प्रीता के पुत्र हो, और प्रीता पांडु की पत्नी है, पांडु कौरव वंश की है, कौरव वह पितामह भीष्म है, और वो तुम्हारे दादा तुम्हारे सामने, अर्जुन कहता है दादा का थोड़ी मारा गया, ऐसे ही चक्कर चला है। तो मतलब जैसे होता है ना, नाम नाम बोला जाता है उसके अनुसार रिलेशन होता है, उसके अनुसार रिलेटिव में स्नेह होता है और उसके प्रति मोह जगता है। तो भगवान ने यही चाल गीता में चली, तो वहां पर भी शुरुआत भी कृष्ण ने पार्थ कह के की थी और यहां पर खत्म भी पार्थ, तुम्हारा मोह खत्म हुआ ना अभी, मेरठ वालों का पता नहीं कब होगा, तुम्हारा हुआ ना, ये भगवान पूछ रहे। और दूसरा कह रहे धनंजय, तुम सारे राजाओं का धन तो जीत कर आ गए, उत्तर दिशा से सारा धन तुम लेकर आ गए थे राजसूय सभा में, तुम्हारा नाम बड़ा था धनंजय, धन को जीतने वाला, लेकिन ये तत्व ज्ञान रूपी धन को जीतो तब जीते मां, तब धनंजय असलियत में कहलाओगे। अब तक तुम धनंजय तो थे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से आने से पूर्व भी, लेकिन संसार के उस धन को जीते थे, लेकिन अब गीता ज्ञान का धन तुम्हें मिला है, अब तुम असली धनंजय हो। ये ज्ञान भी एक धन है ना, असली धन तो यही है भक्ति, राज विद्या भगवान इसको कहेंगे। तो धनंजय अब तुम धनंजय हो ना। अब तब अर्जुन अपना रियलाइजेशन कहता है कि हाँ अच्युत तय प्रसादा मे मोह नष्ट, मेरा मोह नष्ट हो गया है। और मोह नष्ट हो गया है स्मृतिर लब्ध्वा, स्मरण, हम लोग सब विस्मरण में है, हम भूल गए कि हम कृष्ण के दास है, कृष्ण हमारे प्राणनाथ है, लेकिन हमारी ये स्मृति जो है कि हम कृष्ण से दास है, कृष्ण मम प्राण अस्ति, कृष्ण मेरे प्राण है, हम उनके दास है, ये स्मृति आ गया। और योग दर्शन में तो अनुभूति ज्ञान को ही स्मृति कहते हैं, ऐसा नहीं कोई विषय आप भूल जाओ और तुमको याद करा दे तो एक स्मृति है, लेकिन स्मृति शास्त्र को भी कहते हैं ना, स्मृति मतलब एक शास्त्र, और उसमें भी स्मृति शब्द के तो बड़े बड़े अर्थ किए गए हैं आचार्यों के द्वारा, लेकिन एक सरल अर्थ योग शास्त्र में लिखा गया है कि जो ज्ञान आपको रिलाइज हो जाए, अनुभव में आ जाए और सुसदेव स्मृति में टिक जाए और उसके अनुसार आप जीवन यापन करो, वो है स्मृति। तो अर्जुन को वास्तविक श्रुति लब्ध्वा, श्रुति लाभ हो गया था, मतलब तत्व ज्ञान अनुभूति प्राप्त हो गई थी, लब्ध्वा हो गया था, और वो कृष्ण के कृपा से, कृष्ण के प्रसाद से, इसलिए अर्जुन यहां पर सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं कि हे कृष्ण मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो गया। तो यहां पर श्रीधर स्वामी अपने टीका में लिखते हैं भगवद्गीता की कि वे कहते हैं कि अहम मम ये जो अज्ञान है और अहम कृष्ण से दास और कृष्ण मम प्राण है, ये स्वरूप संधान स्मृति में अर्जुन स्थित हो गए। और जब उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सुबह के समय वो दोनों सेनाओं के बीच में रथ गया और अर्जुन ने सारा दृश्य देखा और दृश्य देखकर गात्रा से मम सारे पसीना छूटने लगा, शरीर शुद्ध सब हो गया, और उस समय जय श्री राधा गिरिधर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, और उस समय क्या हुआ, अर्जुन ने कहा विसृज्य सचरम चापम शोक संविघ्न मानस, हे कृष्ण मेरे हाथ से मेरा गांडीव विसृज्य छूट रहा है, शोक संविघ्न मानस मेरा चित्त शोक से मोह से संविघ्न हो चुका है, मैं बोलने की बात क्या करूं, कृष्ण मैं खड़ा होने में समर्थ नहीं हूं। और तुष्णी बभु बैठ गए चुप होते, भगवद गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हो गया उधर। और वही अर्जुन जो पूरा मोह में शोक में संदिग्ध होकर कुछ भी बोलना खड़ा होना समर्थ नहीं, कांप रहा था, अग्नि भी गिर रहा, और अभी ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या कहता है, स्थितोस्मि, स्थितोस्मि मतलब योद्धे युक्तोस्मि, अब युद्ध करने में मैं बहुत मूड में हूं, अपना गांडी उठा लिया। और कृष्ण ने भी कहा धनंजय, टीका में लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक में, चक्रवर्ती बात कहते हैं कि कृष्ण ने कहा कि मेरे इस भूमंडल पर आने का अवतार हेतु प्रयोजन था विनाशाय च दुष्कृतां, और मैं वो तुम्हारे द्वारा कराऊंगा, तुम्हारा नाम होगा, अर्जुन ने मारा, मेरा काम है भूभारण हरण असुर मरण, लेकिन वो तुम्हारे द्वारा कराऊंगा, यश तुमको दिलाऊंगा, इसलिए अभी खड़े हो जाओ। तो अर्जुन अभी तो आज करिष्य वचनम, तो बोलने से पहले खड़ा हो गया, धनुष हाथ में ले लिया, फिर कहा अभी बोलो, ऐसा नहीं कि हाँ आता हूं अभी अगले संडे मिलता हूं, ऐसा नहीं, पहले करी से वध कर दिया, वो मैं बोल दिया ना शीतोष्णि। और गत संदेह धर्म विषय कर्तव्य विषय किम कर्तव्यम विमूढ़म मेरी दशा थी, वो सब संदेह गत, सब डाउट मेरे खत्म हो गए, क्यों, क्योंकि अभी मेरा एक ही धर्म, और मैंने पहले ही आपको कृष्ण बोल दिया है, जो आपने जो गीता में हमको बता दिया था, आपने तो 18वें अध्याय में 66 में बताया मां मैं कम शरणम ब्रज, मैं तो दूसरे अध्याय में ही आपके पास आ गया था, शादी मान तो हम प्रपन्नम, तो भगवान ने कहा तो ऐसे ही आया था, अभी असलियत में आया, जैसे भगत पहले आता है मंदिर में, तो हाँ गिरधारी मैं आपका हूं, आपका चरण में दास हूं। फिर दास तो किसी, दास का तो बाहर जाके एक दूसरों की करता है, बोलता इधर है, ऐसा ही होता है ना। अर्जुन भी आया तो था ऐसे एक रूप में आया, लेकिन अब असलियत में, क्योंकि उस समय शरण में आया, लेकिन क्या कहता है, न योत्से इति, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अब वो क्लियर हो चुके हैं अर्जुन, अब वो कहते हैं कि स्थितो अस्मि, मैं अपने युद्ध करते हुए मैं आप जो बोलो करने तैयार, करिष्ये वचनम करो। देखो पूरी भगवद गीता का प्रचार पूरे संसार में हो रहा है, कई संप्रदाय संप्रदाय सब इसी में लगे, आधार तो गीता का ही लेना पड़ता है। लेकिन कृष्ण की शरणागति जो गीता का सार है, और जिसको गीता कही गई वह अर्जुन अपना अनुभव और अपना अंतिम मत देता है कि हे कृष्ण आपने जो कहा वही करूंगा। अफसोस और दुर्भाग्य इस बात का है कि आज गीता कहने वाले, गीता मानने वाले, सुनने वाले भी इस बात पर नहीं है। वो पत्नी को कहते हैं करिष्ये वचनम तव, बॉस करिष्ये वचनम, कहां कहां करिष्ये वचनम तव करता रहता है, लेकिन जगन्नाथ जी को, गिरधारी को अभी तक नहीं कहा है करिष्ये। उसको पता नहीं है कि इनकी आज्ञा का अगर आप पालन करोगे तो सारा विश्व आपकी आज्ञा का पालन करेगा, क्योंकि जिस जिसने कृष्ण की आज्ञा का पालन किया संसार उसके चरणों में झुका है, क्योंकि भगवान की भक्ति का ये सार है। आपको अंतिम बात सुनाकर इस प्रवचन को खत्म करता हूं। ऐसे इसमें बहुत कुछ मसाला लीला है, लेकिन समय अभाव में मैंने जो भी शब्दों का केवल तारतम्य और श्लोका गीता का ज्वाइंट किया आप लोगों के सामने। वामन देव भगवान जब बलि महाराज के सत्र में गए और वो तीन पग भूमि मांगने में भी सिर ले लिया, चरण रख दिया सर पर, सारा लीला समाप्त हो गया। गुरु शुक्राचार्य वहां पर खड़े थे, ब्रह्मा जी खड़े थे, विंध्यावली और सब प्रहलाद सब पूरी सभा खड़ी हुई थी, और वहां पर भगवान ने कहा हे ब्रह्मन, शुक्राचार्य से कहा हे ब्रह्मर्षि, गीता में कहते कवि नाम कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, बहुत बुद्धिमान है संजीवनी मंत्री के ज्ञाता, मंत्र के ज्ञाता शुक्राचार्य, और उसको भगवान वहां पर ब्रह्मन कहते कहते कि ब्रह्म जाना आप जानते हो तत्व, और गुरु ने बता भी दिया था ये सब नारायण ये यही है विष्णु साक्षात, तो आप हे ब्रह्मन तब तो शिष्य है ना, आपका शिष्य का जो यज्ञ चल रहा था और मैं बीच में आ गया। वामनदेव भगवान कहते हैं, किसको कहते हैं, शुक्राचार्य को, कि हे ब्रह्मन आपके शिष्य का ये 100 अश्वमेध चल रहा था और मैंने आकर रोक दिया और ये सब घटित हो गया, लेकिन अब जो हो चुका हो चुका, अब आप अपने शिष्य का 100 अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण करा लीजिए। ये किसने कहा, विष्णु ने, वामन ने। तब वहां पर शुक्राचार्य ने कहा 8, 23, 17 बड़े अच्छे मंत्र तंत्र महामंत्र की महिमा भी कही है, लेकिन इस श्लोक से मिली हुई बात शुक्राचार्य ने भी कहा है, क्योंकि कृष्ण की विभूति है ना, कृष्ण जो गीता में कहते हैं वही बात का तारतम्य वहां पर भी दिया गया है। तथापि वद तो भूमन करिष्यामि अनुशासनम, हे भूमन, देखो शुक्राचार्य कहते हैं पूरे भूमंडल को एक पैर में आपने नाप लिया, वदपो तथापि आप बोल रहे हो तो अनुशासनम करिष्यामि, आपने जो शासन आज्ञा दिया है मैं करूंगा, क्योंकि आपका नाम लेने से सारे यज्ञ समाप्त हो जाते हैं। आप स्वयं मेरे शिष्य के यज्ञ में पदार्पण किए हो, पधारे हो, तो क्या मेरे शिष्य का कोई यज्ञ अधूरा रहा है। यज्ञ पे साक्षात पुरुषम, यज्ञ पुरुष तो आप हो, और आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होता है, और आप साक्षात आ गए और मेरे बलि मेरे शिष्य के व्यवहार से उनकी समर्पण भक्ति से आप प्रसन्न हो गए, और अभी क्या बाकी रहा मेरे शिष्य के लिए, कुछ करना बाकी नहीं रहा, सब सार्थक हो गया, फिर भी आपकी आज्ञा है तो अनुशासन मैं करूंगा। क्यों, तो शुक्राचार्य अब उत्तर चरण में इस श्लोक की समाप्ति करते हुए कहते हैं, याद रखिए पढ़ने लायक है ये श्लोक 8, 23, 17 एतत् श्रेय परम पुंसा तव आज्ञानुपालनम। पुंसा मनुष्यानाम परम श्रेयम, सबसे बड़ा मंगल शुभ कल्याण उसी में है, हे वामन देव हे विष्णु आपकी आज्ञा का पालन करने में ही मनुष्य का परम श्रेय परम मंगल है, ये मैं जानता हूं, इसीलिए मेरे शिष्य का कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो मैं यज्ञ पूरा कराऊंगा, हम आपका अनुशासन जरूर पालन करूंगा। जैसे यहां अर्जुन कहते हैं करिष्ये वचन, आपने जो बोला वही करूंगा, वहां पर शुक्राचार्य भागवत में कहते हैं कि मनुष्य का परम श्रेय आपकी आज्ञा का पालन करने में है, और इसीलिए प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, साधु शास्त्र गुरु आज्ञा चिते हृदय करिय एक्य। साधु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा और सदगुरु की आज्ञा, मैं चित्त में एकाग्र करके करूंगा, उसको निश्चित करूंगा कुछ भी हो जाए। इसलिए आप नए वर्ष के इस शुभ अवसर शुभ प्रारंभ करना चाहते हो तो भगवत गीता का सार संदेश, अर्जुन का ये अनुभव और अर्जुन का ये शरणागति का सार कि हम कृष्ण की शरण में है, मतलब उनकी आज्ञा पालन करेंगे, ये उनकी शरणागति। अर्जुन ने कहा था, कृष्ण ने कहा था मामेकम शरणम व्रज, तो अर्जुन उसका मूर्तिमान रूप बन गया और कह रहा है कि आपने जो बोला वही करूंगा, सब छोड़ दो, बात धर्म क्या कहता है, तंत्र क्या कहता है, तंत्र क्या कहता है, यंत्र क्या कहता है, सब षड्यंत्र है, महामंत्र ही जपूंगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, क्योंकि आपकी गीता में आज्ञा है सतत कीर्तयन्तो माम, सदैव मेरे नाम का कीर्तन करो, और वही महाप्रभु के रूप में आकर आपने यही किया और कराया है। इसलिए हम भी कृष्ण की आज्ञा का पालन करेंगे। गीता में उसने कहा मत भक्त मेरे भक्त बनो, मेरी शरण में आओ, मेरे नाम का कीर्तन करो, तो हमें भी हमारे जीवन में भगवत गीता को उतारना। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि भगवत गीता जन जन के पास पहुंचे और गीता का सार संदेश कृष्ण की भक्ति, कृष्ण शरणागति, लेकिन हम भक्त लोगों को प्रभुपाद जी चाहते कि स्वयं पढ़े इनको, इनका अध्ययन करे, इस पर विश्वास करे। अर्जुन पूर्ण विश्वास में है, जो बोलो वही करूंगा, रिजल्ट जो भी हो, इस भाव में आना है, तब भगवत गीता को हम हृदय की माना जाएगा, और तब हम भक्तों को चाहिए कि इसका वितरण करना है। तो बड़ा शुभ पवित्र महीना है प्रभुपाद जी की कृपा लूटने का, कृष्ण की कृपा लूटने का। हम यही निवेदन के साथ अपने वक्तव्य को विराम देते हैं कि आप सभी हर रोज गीता पढ़िए, एक श्लोक आधा श्लोक की महिमा इतनी लकी लिखी गई है शिव जी के द्वारा पद्म पुराण में, आप अंदर आप मानोगे नहीं, कहां से कहां दुर्गति है वो सदगति में परिणित हो जाती है गीता का आधा श्लोक सुनने पर, चिंतन मनन करने पर। लेकिन हमारा वो लक्ष्य भी नहीं है जो पद्म पुराण में दिया गया है, राजा बन गया, ये हो गया, इधर हो गया। हमारा काम है कृष्ण की आज्ञा का पालन करना, और उसने ये इसमें पहले आज्ञा दी है, ये जो मेरे धर्म संवाद मेरा जो चर्चा करता है वो ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करता है, ये ज्ञान यज्ञ बताया गया है। इसलिए हम सभी भक्तों को प्रभुपाद जी की एज इट इज और कृष्ण तत्व को समझना है, प्रचार में आगे बढ़ना है, तो इन गीता को हर रोज पढ़ना है। फिर रिजल्ट जो भी कितने श्लोक याद रहे क्या याद रहे वो सेकेंडरी काम है। उस चैतन्य महाप्रभु ने कृपा उसी ब्राह्मण को दी दक्षिण भारत में, उसने कहा शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी। महाप्रभु ने कहा तुम्हारी हंसी उड़ाते लोग, तो तुमको संस्कृत नहीं आता क्या, तुमको ऐसा लगता है कि रो रहे। उस ब्राह्मण ने कहा मुझे तो नहीं आता, लेकिन मैं अशुद्ध पढ़ता हूँ चाहे शुद्ध पढ़ता हूँ, लेकिन इसलिए पढ़ता हूँ कि मेरे गुरु ने कहा, गुरु आज्ञा मानी, इसलिए गीता। महाप्रभु समझ पहले प्रेम आलिंगन प्रेम दिया, आप लीला सब जानते हो। हर रोज गीता पढ़ना है, एक दो श्लोक प्रभु का चिंतन करना है, और गीता में ही कृष्ण ने कहा है कि मद भक्ति मेरे भक्तों में जो इसे प्रचार करता है उससे प्रिय न है न होगा न हुआ है न है, सब तीनों काल में बोल दिया। तो इसलिए भगवान का प्रिय बनने के लिए, प्रभुपाद जी का प्रिय प्रिय कृपा प्राप्त करने के लिए गीता पढ़िए, गीता बांटिए, और गीता के अनुसार अर्जुन की तरह शरणागति लेते हुए भक्ति में जीवन बिताइए। और दास को आशीर्वाद दीजिए कि जो वाणी में है वो जीवन में आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।